मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 27 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं गजानंद सिदार, आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, और रवि प्रकाश सिंह, आप पूर्वी चंपारण बिहार से हैं। तो गजानंद और रवि, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के कलेक्शन पर, मैं इस पर बाद में आऊंगा। आज मैं आपसे न्यूज के तहत कुछ अलग ही स्टाइल से बात करने जा रहा हूं। अलग स्टाइल से यह मैंने अभी इसका चयन किया है, आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। कल मैंने इसकी थोड़ी सी आप लोगों को हिंट दी थी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, लेकिन आज मैं उसे पूरी तरह से यहां लागू कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे अपने इस नए प्रयोग ही मैं कहूंगा फिलहाल के बारे में अवगत कराएं कि आपको यह जो नया प्रयोग है या नया स्टाइल है ये कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए या इससे पहले वाले ही स्टाइल में आना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, काफी कुछ मुझे आप लोगों की जरूरत का आभास है, ज्ञान है, मैं जानता हूं कि आपकी क्या जरूरत हो सकती है। सिविल सर्विस के बारे में तो मैं 100% जानता हूं कि सिविल सर्विस को क्या चाहिए, और उनको जानने के बाद, सिविल सर्विस को जानने के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों को मैं जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों कॉमन तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए आप सब जितने भी लिसनर हैं जितने भी श्रोता हैं सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, शैक्षणिक पारिवारिक वातावरण सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है और उसके हिसाब से आप सबकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। वहां पर एक संकट जरूर पैदा होता है कि मैं आप सबके अलग अलग जरूरतों को कैसे एक सामान्य जरूरत के लेवल पर लाकर अपनी बात कहूं, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा संकट, यूं कह लीजिए कि चुनौती है, संकट तो नहीं कहना चाहिए, मेरे लिए चुनौती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब थोड़ा सा आज एक नए तरीके से आप लोगों से बातें कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी राय मुझे इसके बारे में दें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए स्वयं को उपयोगी सिद्ध कर सकूं। तो मित्रों आज मैं आइए उसकी शुरुआत करता हूं। आपने न्यूज सुना होगा, सुनी है न्यूज, मैं न्यूज से ही चीजें निकालूंगा, अब मैं न्यूज पर नहीं जा रहा हूं। आपने न्यूज सुनी कि किस तरीके से समझौते हुए हैं और उनमें आपने दो तीन बातें सुनी होंगी। जैसे आपने एक शब्द सुना जलवायु आधारित फसलें, मतलब जलवायु आधारित फसलों के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ और वो लोन प्रोवाइड करेगा, विश्व बैंक लोन देगा और वो जो लोन दे रहा है वो जलवायु आधारित फसलों के लिए दे रहा है और वो डॉलर में दे रहा है, है ना। बट नेचुरल है कि जो विश्व बैंक देगा, मतलब जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में ज्यादातर डॉलर का ही नाम लिया जाता है, डॉलर और पाउंड दो नाम ज्यादा बोलने और पढ़ने में आते हैं। अब आप देखें कि आपने सुना जलवायु आधारित फसलें, सामान्य तौर पर तो समझ में आ जाती है कि जलवायु आधारित फसल क्या होगी, मतलब ऐसी फसलें जिनका हमारे क्लाइमेट पर एडवर्स इम्पैक्ट न हो तो उसे आप कहेंगे जलवायु आधारित फसलें। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों, या ऐसी कौन सी फसलें हैं जो जलवायु आधारित हैं, या क्या सच में फसलों से भी जलवायु खराब हो रही है, जैसे आप गाड़ियों से पेट्रोल का धुआं निकल रहा है उससे जलवायु खराब हो रही है ना, फैक्ट्रियों से औद्योगिकरण से जलवायु पर असर पड़ रहा है, ये सब चीजें तो हम जानते हैं जो गैसेज निकल रही है, लेकिन क्या फसलों से भी जलवायु पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको जानना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या इम्पैक्ट होता है, फसलें किस तरह से जलवायु पर प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में फिर आपको थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि अब सिविल सर्विस का पैटर्न इसके करीब आ चुका है। खासकर मैं 2017 के एग्जाम के आधार पर यह बात कह रहा हूं। होता क्या है कि जब हम इन छोटी छोटी बातों को मिस कर जाते हैं तो इनफैक्ट सच पूछे तो बड़ी बातें अपने आप मिस हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जब हम फसल लगाते हैं तो उन फसलों का अपना अपना चरित्र होता है। बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जो जमीन को ऊसर बना देती हैं। जब जमीन को वो ऊसर बना देती है तो फिर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद डालते हैं, फिर ये रासायनिक खाद बह करके पानी में जाकर के मिलता है, पानी में जाकर के मिलता है तो पानी प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण हो गया, और साथ ही साथ उनका फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स है वो अनाज में भी आते हैं, जो चीज हम पैदा करने चाहे वेजिटेबल्स हो, फिर वो हमारी बॉडी पर भी प्रभाव डालते हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि सॉइल में कार्बन होता है, जो मिट्टी है उसमें कार्बन होता है, अगर आप उसकी बहुत ज्यादा जुताई करेंगे, बहुत ज्यादा उसका इरोजन होगा तो वो कार्बन मिट्टी से निकल करके वातावरण में जाएगी, तो वातावरण में गैस जिसको लेकर के हम सब परेशान हैं, तो वो गैस की मात्रा में वृद्धि करेगा। तो ऐसी फसलें लगाई जाए जिससे कि मिट्टी का जो कार्बन है वो वातावरण में न जा पाए। इसके साथ ही साथ ऐसे फसलें पैदा करें ताकि मृदा और अपक्षरण न हो, यानी कि मिट्टी ज्यादा से ज्यादा जमी रहे, वो बहकर पानी के साथ बहे नहीं। तो इस तरीके से कुछ फसलें ऐसी हैं जो इनसे हमारी रक्षा करती हैं। और चूंकि अब जो विश्व जलवायु है दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक इस तरह के समझौते कर रहा है। फिर आपने विश्व बैंक के बारे में सुना कि विश्व बैंक से समझौता हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप विश्व बैंक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखें। तो विश्व बैंक के बारे में क्या जानकारी हो सकती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, कब इसका गठन हुआ, 1945 में इसका गठन हुआ, कहां इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, ये क्या है विश्व बैंक तो हम कह देते हैं लेकिन बेसिकली ये है क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। विश्व बैंक का मतलब ये नहीं कि एक बैंक है या एक विश्व के स्तर का बैंक है या विश्व बैंक विश्व बैंक है। इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली होगी वो होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। फिर ये लोन देता है, तो लोन किस लिए देता है, क्या मैं गाड़ी खरीदना चाहूं तो मुझे लोन दे देगा कोई देश, मान लीजिए, नहीं, ये जो लोन देता है ये कैपिटल प्रोग्राम्स के लिए देता है, मतलब ऐसी चीजों के लिए लोन देगा जिससे आपके धन में वृद्धि हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए देगा, खर्च करने के लिए नहीं देगा, जिससे कि संपदा का निर्माण हो। इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बड़ा खूबसूरत है, गरीबी मुक्त विश्व, गरीबी मुक्त विश्व, पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। तो बट नेचुरल है कि अगर यह इसका मोटो है तो लोन देने में यह उन प्रोग्राम्स को ज्यादा महत्व देगा जिससे किसी भी देश को गरीबी से उबरने में मदद मिले। तो यह बहुत बेसिक चीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आपने किसानों के बारे में सीमांत किसान शब्द न्यूज में सुना, देखिए आप अखबारों में लगातार पढ़ते रहते हैं सीमांत किसान, छोटे किसान, मझले दर्जे के किसान, बड़े किसान, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ है, इनकी भी कोई ना कोई तो डेफिनेशन होगी। सामान्य तौर पर हम कह लेते हैं जिसके पास अच्छी खासी जमीन है वो बड़ा किसान हो गया, जिसके पास थोड़ी सी कम है वो मध्यम दर्जे का किसान हो गया, लेकिन चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। तो परफेक्ट जानकारी क्या है, बहुत ही सिंपल सी है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम सीमांत किसान से शुरू करते हैं। सीमांत किसान मतलब बिल्कुल जो सीमा पर है, सीमा पर यानी कि जिसके पास एक हेक्टेयर तक जमीन है, एक हेक्टेयर, यहां मैं हेक्टेयर में ही बात करूंगा, एक हेक्टेयर इक्वलेंट टू 2.5 एकड़ के होता है, जिसके पास एक हेक्टेयर तक की जमीन है वो सीमांत किसान हो गया। फिर अब छोटा किसान क्या हो गया, छोटा किसान ऐसा है जो एक हेक्टेयर से जिसके पास अधिक है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है वो छोटा किसान हो गया। अब मध्यम दर्जे का किसान, मध्यम दर्जे का किसान वो हो जाएगा जो अब 2 हेक्टेयर से जिसके पास अधिक है लेकिन 5 हेक्टेयर से कम है, 2 से 5 की रेंज उसकी हो गई। फिर बड़ा किसान जिसके पास 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, 5 हेक्टेयर का मतलब हुआ 12.5 एकड़, थोड़ा सा आप समझ गए। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन, एक साइंटिफिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो साइंटिफिक नॉलेज आपके पास आ जाती है। सिविल सर्विस मित्रों इस तरह के स्पेसिफिक नॉलेज की आपसे डिमांड करता है कि आपको मालूम हो, राइट। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बात की, न्यूज में आज कुछ खास ऐसा नहीं था कुलभूषण जाधव जी को लेकर के, जो पाकिस्तान ने अपना एक अमानवीय रुख जो दिखाया है दुनिया के सामने, उससे संबंधित खबरें थी, वो आपने न्यूज में भी सुनी है, डीडी न्यूज पर भी आपने सुनी है और आज अखबारों में भी काफी कुछ दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी बात भी की थी, इसलिए वो आज हमारे इसका विषय, डिस्कशन का विषय नहीं है। आइए अब मैं जीएसटी के कलेक्शन पर आता हूं। अब आप देखिए कि आपने छोटी सी खबर सुनी कि जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई, एक आंकड़ा आपने किया कि लगभग 80,800 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन नवंबर के महीने में हुआ। फिर आपने उसमें स्लैब देखे कि इसमें राज्यों की भागीदारी इतनी है, इसमें केंद्र की भागीदारी इतनी है और इस ये इंटर स्टेट के तहत इतना कलेक्शन हुआ है, और चिंता की बात इसमें यह रही कि ये जो कलेक्शन है ये पिछले महीने की तुलना में कम है, राइट। अब आप देखिए कि इसमें चिंता की बात क्या है। चिंता की बात मित्रों इसमें यह है कि अगर जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए सरकार की आमदनी कम हो रही है। सरकार के पास जो आमदनी का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो टैक्सेस है, सरकार के पास टैक्सेस मतलब सरकार की आमदनी कम हो रही है। अगर सरकार की आमदनी कम हो रही है तो इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये अब आपको सोचना चाहिए कि सरकार क्या करती है। देखिए, सरकार के पास इतना बड़ा अमला है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जिससे वो पूरी व्यवस्था देखती है, उनकी वो सैलरी दे रही है ना, दुनिया भर के प्रोग्राम्स, वो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम चला रही है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, और फिर जैसा कि मैंने कहा वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, मिड डे मील चल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, आवास योजनाएं चल रही है, ये सब वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं। अब इन सबको चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। अब सोच करके देखिए कि अगर टैक्स से पैसा आना कम हो जाए तो सरकार अब इन प्रोग्राम्स को कैसे चलाएगी, और चलाना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, तो सरकार क्या करेगी। फिर सरकार के पास एक ही उपाय रह जाता है कि वो लोन ले, चाहे वो अपने देश के पब्लिक से लोन ले, बैंक से लोन ले, या वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे संस्थानों से, जो वित्तीय संस्थान है उनसे लोन ले। तो जब वो बाहर से लोन लेती है तो बट नेचुरल है कि उस पर उसको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और पता लगता है कि जब हम ब्याज के चक्र में फंसते हैं तो फिर फंसते चले जाते हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट डालता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम बाहर से लोन लेंगे, अपने पास हमारे पास साधन नहीं है, तो हमारे पास जब पैसा आएगा तो पैसा आने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो मनी है, जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोगों का जीवन दुभर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पैटर्न की सरकार हो, उसकी कोशिश होती है कि उसका जो आमदनी और खर्च का जो अनुपात है वो लगभग लगभग समान सा रहे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेफिनेटली जितना कमाती है उससे थोड़ा वो ज्यादा खर्च करने में विश्वास करती है, क्योंकि वो डेवलपिंग है, उन्हें ज्यादा खर्च करने की अभी जरूरत है। इसी को ही हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, इसी को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, यानी कि हमने जैसे 80,000 करोड़ रुपए हमने सरकार ने कमाए तो पता लगेगा कि वो 82,000 करोड़ रुपए तो उसने खर्च कर दिए। खर्च करने का मतलब है नहीं कि केवल सैलरी वैलरी में बांट दिए, उसका पूरा का पूरा खर्च जो मैंने अभी आपको बताया। तो मित्रों, ये एक चिंता का कारण होता है, और जब आप ज्यादा आपका जो फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा जब ज्यादा हो जाता है तो बट नेचुरल कि फिर वही होता है कि आप लोन लेते हैं और फिर एक तरह के दुष्चक्र में घिरते चले जाते हैं। अब आप देखिए कि जीएसटी का कलेक्शन कम क्यों हुआ, अब इसको देखते हैं, जीएसटी का कलेक्शन कम क्यों हुआ। तो देखिए, एक सिंपल सा आप अपने दिमाग से सोचिए, मैं एक बहुत व्यावहारिक अर्थशास्त्र की बात आपसे कर रहा हूं और उसी तरीके से बताने की कोशिश भी कर रहा हूं, मैं आर्थिक सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी में जो अर्थशास्त्र होता है उसके माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मित्रों, तो सरकार को टैक्स चाहिए, टैक्स वस्तुओं पर है और सर्विसेज पर है। अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा तो सरकार को उससे ऑटोमेटिक टैक्स मिल जाएगा। अगर सरकार को टैक्स कम मिला है तो इसका मतलब है कि चीजों की, वस्तु और सेवाएं, दो ही सेक्टर होते हैं मेन, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी का मतलब भी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसका मतलब है कि सामान भी कम खरीदा गया है और सर्विसेज का भी कम इस्तेमाल किया गया है, तभी सरकार को टैक्स कम मिला है। और अगर ये चीज चलती रही कि सामान कम खरीदा जाता रहेगा और सर्विसेज का कम उपयोग किया जाएगा, तो आगे चल करके क्या स्थिति होगी? इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। जब आप हम सामान कम खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों से सामान का उत्पादन कम होगा, जब फैक्ट्रियों से सामान का उत्पादन कम होगा तो फैक्ट्रियों को नुकसान होगा, तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, अपना उत्पादन कम करेंगी, तो वहां वो अपने कारीगर मजदूरों को निकालेंगी, श्रमिकों को निकालेंगी, रोजगार के अवसर कम होंगे। तो अब आप देखिए कि फिर से हम एक अलग किस्म के दुष्चक्र में फंस रहे हैं। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो फिर से आप सामान कम खरीदेंगे, और सामान कम खरीदेंगे तो उसका प्रभाव फिर से फैक्ट्री पर पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो काम करती है, बड़े अद्भुत तरीके से काम करती है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, ये जीएसटी के कलेक्शन को लेकर के मुझे आपसे सामान्य कह लीजिए अर्थशास्त्र पर कुछ बातें करनी थी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं दीपिका कोहली, मनीषा पांडे, पीयूष अग्रवाल अमृतसर पंजाब से, चंदन सिंह कुंवर और हिराकी मीना। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।